एहेस्केल अध्याय 22। परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा? अध्याय 22 में वो कहता है कि वहां क्या क्या हो रहा है और उनके पापों के कारण दंड आने वाला है। एहेस्केल अध्याय 22 पद 1 से लेकर 4 तक। और यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय ना करेगा? क्या तू उसका न्याय ना करेगा? उसको उसके सब घिनौने काम जता दे और कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे नगर, तू अपने बीच में हत्या करता है जिससे तेरा समय आए और अपनी ही हानि करने और अशुद्ध होने के लिए मूर्तें बनाता है। जो हत्या तूने की है उसे तू दोषी ठहरी और जो मूर्तें तूने बनाई हैं उनके कारण तू अशुद्ध हो गई है। तूने अपने अंत के दिन को समीप कर लिया और अपने पिछले वर्षों तक पहुंच गई है। इस कारण मैंने तुझे जाति जाति के लोगों की ओर से नाम धराई का और सब देशों के ठट्टे का कारण कर दिया है, क्योंकि वे मूर्ति पूजा करते और हत्या करते तथा अपने शिशुओं की बलि चढ़ाते थे। एहेस्केल अध्याय 22 पद 5 और 6। हे बदनाम, हे हुल्लड़ से भरे हुए नगर, जो निकट और जो दूर है वे सब तुझे टट्ठों में उड़ाएंगे। देख, इसराइल के प्रधान लोग अपने अपने बल के अनुसार तुझ में हत्या करने वाले हुए हैं, उनके प्रधान भ्रष्ट हो चुके थे। एहेस्केल अध्याय 22 पद 7। तुझ में माता पिता तुच्छ जाने हैं, तेरे बीच परदेशी पर अंधेर किया गया और अनाथ और विधवा तुझ में पीसी गई है। प्रधानों ने धार्मिकता का त्याग करके न्याय में शोषण करना आरंभ कर दिया था। वे परदेशी को, अनाथ को, विधवाओं को दुख देते थे और दुर्बल से अनुचित लाभ उठाते थे। एहेस्केल अध्याय 22 पद 8 से लेकर 10 तक। तूने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया है। तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने को तत्पर हुए और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है। तेरे बीच महापाप किया गया है, तुझ में पिता की देह उधारी गई, तुझ में ऋतुमती स्त्री से भी भोग किया गया है। उनकी व्यवस्था के अनुसार ऋतुमती स्त्री से यौन संबंध बनाना मना था, परंतु वे इस आज्ञा का उल्लंघन करते थे। एहेस्केल अध्याय 22 पद 11। किसी ने तुझ में पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना काम किया और किसी ने अपनी बहू को बिगाड़कर महापाप किया है और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपने पिता की बेटी को भ्रष्ट किया है। उनमें कौटुंबिक व्यभिचार हो रहा था, हर प्रकार का व्यभिचार और अश्लीलता वहां थी। एहेस्केल अध्याय 22 पद 12। तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है, अर्थात उनमें सुपारी लेकर हत्या करने वाले भी थे। एहेस्केल अध्याय 22 पद 12 में आगे लिखा है, तूने ब्याज और सूद लिया। ब्याज का दर 20% तक हो गया था, ये एक अपराध है। एहेस्केल अध्याय 22 पद 12 में आगे लिखा है, और अपने पड़ोसियों को पीसकर अन्याय से लाभ उठाया और मुझको तूने भुला दिया है, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर को भूले बिना कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। यदि किसी में परमेश्वर का भय हो तो वो ऐसे कभी नहीं करेगा। ऐसे काम करने के लिए परमेश्वर को अपने मन में से निकालना होगा। एहेस्केल अध्याय 22 पद 13। सो देख, मैं तो कहूंगा कि यह परमेश्वर त्याग का परिणाम है। अब आपका मार्गदर्शक कौन है? अब आपकी नैतिकता का मापदंड क्या है? सही और गलत का मापदंड अब क्या रह गया है? यदि आप कहे कि परमेश्वर नहीं है और इस प्रकार आप उसे सृष्टि से बेदखल कर दें, तो लोग निरंकुश हो जाते हैं, नैतिक कानून समाप्त हो जाते हैं। यदि मनुष्य अपने ही स्वार्थ में जीवन का अनुभव करें और जीवन के विभिन्न पक्षों को अपने ही तक सीमित रखें तथा उत्तर देने के लिए परमेश्वर ना हो, तो ये सब होगा ही। उन्हें कौन कहेगा कि ये सब गलत है? टाइम पत्रिका में एक लेख था कि कौटुंबिक व्यभिचार स्वास्थ्य के लिए और परिपूर्ण जीवन के लिए लाभदायक होता है। जब संतान 2 या 3 साल के हो, तभी ये अभ्यास आरंभ कर देना अच्छा है। इससे वे प्रेम के नए रूप को देखेंगे। अब यदि परमेश्वर ना हो, तो कौन कहेगा कि यह गलत है? कौन कहेगा कि व्यभिचार गलत है? कौन कहेगा कि ब्याज लेना गलत है, सुपारी लेना गलत है, हत्या करना गलत है? आपका मापदंड क्या है? परमेश्वर को तो आपने बाहर कर दिया, अब मनुष्य जो चाहे सो करें। इसका प्रमुख कारण है परमेश्वर के वचन को भुला देना। मुझको तूने भुला दिया है। होशे कहता है कि हमने हवा भोई है, इसलिए हम आंधी का फसल काट रहे हैं। हम सेक्युलर मानवता का परिणाम भुगत रहे हैं। केवल प्रार्थनाओं से ही हमारा बचाव हो सकता है। इसराइल का इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि वहां भी ये सब हो रहा था। वे परमेश्वर को भूल चुके थे। यदि उनके मन में परमेश्वर होता, तो उनका विवेक परमेश्वर के नियंत्रण में होता और वे ये सब कर ही नहीं पाते। एहेस्केल अध्याय 22 पद 13 से लेकर 16 तक। सो देख, जो लाभ तूने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्या की है, उससे मैंने हाथ पर हाथ दे मारा है। सो जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझ यहोवा ने ये कहा है और ऐसा ही करूंगा। मैं तेरे लोगों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा और तेरी अशुद्धता को तुझ में से नाश करूंगा और तू जाति जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि में अपवित्र ठहरेगी। तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। लगभग 61 या 62 बार एहेस्केल में परमेश्वर कहता है, तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूं, या वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। एहेस्केल अध्याय 22 पद 17 से लेकर 22 तक। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इसराइल की घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। वे सबके सब भट्टी के बीच के पीतल और रंगे और लोहे और शीशे के समान बन गए। वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यूं कहता है, इसलिए कि तुम सब के सब धातु का मैल के समान बन गए हो, सो देखो, मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूं। जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, शीशा और रांगा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग फूंक कर पिघलाया जाए, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जल जलाहट से इकट्ठा करके वही रख कर पिघला दूंगा। तुमको वहां बटोर कर अपने रोष की आग से फूंकूंगा और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे, तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जल जलाहट भड़काई है वो यहोवा है। ये बड़ी ही विचित्र बात है कि जब मूसा व्यवस्था विवरण में लोगों के परमेश्वर त्याग की भविष्यवाणी कर रहा था, तब उसने कहा था कि यदि प्रतिज्ञा के देश में इसराइल के वंशज परमेश्वर से दूर होंगे या उसे भूल जाएंगे तो वे भूखमरी से नाश होंगे और जलाने वाली गर्मी से नाश किए जाएंगे। यहां परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें अपने कोप और जल जलाहट से इकट्ठा करके वहीं रखकर पिघला दूंगा। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। एहेस्केल अध्याय 22 पद 23 से लेकर 25 तक। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जल जलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्यद् वक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की घोष्टी की। भविष्यद् वक्ता भ्रष्ट हो गए थे, वे लोगों से झूठ कह रहे थे। एहेस्केल अध्याय 22 पद 25 में आगे लिखा है, उन्होंने गरजने वाले सिम की नाई आहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। ये झूठे भविष्यद् वक्ता लालची थे, वे हमेशा पैसा ही मांगते रहते थे। वे कहते थे, प्रभु को दोगे तो आशीष मिलेगी, जैसे कि परमेश्वर भूखा नंगा है, उसके कामों के लिए पैसा नहीं रहा। यदि आप पैसा नहीं देंगे तो परमेश्वर सड़क पर आ जाएगा, आपको उसे इस बदकिस्मती से बचाना है। वे गरीब विधवाओं को लूट रहे थे। एहेस्केल अध्याय 22 पद 26। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। अमेरिका में सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि 80% नरक को नहीं मानते हैं और 60% स्वर्ग को नहीं मानते हैं। 78% नहीं मानते कि यीशु का जन्म कुवारी मरियम से हुआ था। पुनरुत्थान में भी अनेक सेवक विश्वास नहीं करते। ऐसी स्थिति में कलीसिया यदि मृतक है तो कोई अचंभे की बात नहीं है। कुछ मिलता तो है नहीं, चर्च जाकर क्या करें? कलीसिया के कामों में भाग ना लेंगे तो कोई नुकसान तो है नहीं। याजकों ने व्यवस्था का उल्लंघन किया था, वे परमेश्वर से दूर हो गए थे, अतः परमेश्वर ने कहा, मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। एहेस्केल अध्याय 22 पद 27 और 28। उसके प्रधान भेड़ियों की नाई आहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राण घात करने को तत्पर रहते हैं, और उसके भविष्यद् वक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे ये कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर के नाम में अनर्थ, परमेश्वर के नाम में धनोपार्जन। प्रभु यहोवा यूं कहता है, मुझे तो ऐसा पत्र मिलते ही रहते हैं। परमेश्वर ने मेरे मन में आपका नाम दिया है। आपके लिए मेरे पास विशेष संदेश है कि आप पैसा भेजें, मुझे नई गाड़ी खरीदनी है। एहेस्केल अध्याय 22 पद 29 और 30। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। यहोवा दयावंत है, वो दया निधान है, वो क्रोध करने में विलंब करता है, वो हमेशा नहीं परखता और ना ही वो सदैव दंड देता है। दूसरे शब्दों में न्याय का एक दिन आ सकता है। वो चाहता तो नहीं है, परंतु वो कभी कभी मजबूर हो जाता है। यहां इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसराइल की पापों की बहुतायत में भी वो अवसर खोज रहा है कि उन्हें क्षमा करे। परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर बाड़ा लगा देता है। आयुब की कहानी में देखिए, परमेश्वर ने शैतान को बड़े गर्व से कहा था कि उसका सेवक आयुब एक अति धर्मी व्यक्ति है जो बुराई से दूर रहने वाला है और भलाई से प्रेम रखता है। शैतान ने उससे कहा कि तूने उसके चारों ओर सुरक्षा कवच डाल रखा है, मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। यदि तू उसका सुरक्षा कवच उठा ले तो मैं उसे विवश कर दूंगा कि वो तुझे कोसे। तूने उसे समस्त आशीषें दी है, ऐसे में कौन होगा जो तुझे कोसेगा, तेरी सेवा ही करेगा। वो तो भाड़े का टट्टू है, उसने सब आशीषें पाई है, इसलिए तेरे गुण गाता है। उसका सुरक्षा कवच हटाकर तो देख। परमेश्वर ने हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना रखा है, परंतु पाप उसे ढा देता है। परमेश्वर खोज रहा है कि कोई उस टूटे हुए कवच का पुनर्निर्माण करे। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में खाई उत्पन्न हो गई है, इसलिए परमेश्वर खोज रहा है कि कौन मध्यस्थता करेगा। मसीह यीशु ने आकर क्रूस पर अपना लहू बहाया जिससे कि वो खाई भर दी जाए और हमारा परमेश्वर से मिलाप हो। और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। अर्थात एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इसराइल के लिए मध्यस्थता करे। एहेस्केल अध्याय 22 पद 31। इस कारण मैंने उस पर अपना रोष भड़काया और अपनी जल जलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का बदला अर्थात दंड आ गया है। एहेस्केल अध्याय 22 पद 31 में आगे लिखा है, मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। अब दया की गुंजाइश नहीं है, केवल दंड और बदला अर्थात उनका जूता उन्हीं का सर। जो उस समय इसराइल में हो रहा था वो आज भी हो रहा है। इतिहास लौट कर आता है। सिद्धांत तो आज भी वही है, परमेश्वर दयावंत है वरन दया निधान है। वो आज भी प्रतीक्षा करता है कि कोई मध्यस्थता करे, अन्यथा विनाश निश्चित है। उसके पास देर है, अंधेर नहीं।